संगम युग की यात्रा में जिसका पुरुषार्थ सहज, उसका सब कुछ सरल, पूरा कल्प सफल, और जिसका पुरुषार्थ सहज नहीं, उसको कदम कदम पर कठिनाइयां, जीवन विघ्नों से भरा, मन परेशान। तो किसको महत्व देंगे, पुरुषार्थ अच्छा हो जाए उसको, या समस्याओं में घिरे रहे उसको? उत्तर तो साफ है, फिर भी बोल दो। कोई भी नहीं चाहता कि परेशानियों में जीवन चक्रव्यूह में उलझ जाए। परेशानी कहीं कहीं चक्रव्यूह बन जाती है। बाबा की मुरलियों में बहुत गहरी गहरी बातें हम सुन रहे हैं। कल परसों संडे था ना, परसों दो बातें बहुत गहरी थी। पहले मैं उन पर ले चलूं आपको, हैं तो बहुत बड़ी, लेकिन बड़े भी बैठे हैं। बड़े हैं आप सब। मैं इसलिए नहीं पूछ रहा कि कोई कहे हमें अभिमान है हम बड़े हैं। सचमुच बड़े हैं सब। क्या टाइटल दिया, पूर्वज, ये अभिमान नहीं, स्वमान। हम सब बड़े, छोटे भी पूर्वज हैं, तुम भी पूर्वज हो। हो यार, लज्जा आती है। पूर्वज बड़े हैं, पूर्वज माना सृष्टि के बड़े। पहला नंबर शिव बाबा का, दूसरा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर प्रजापिता ब्रह्मा का, और तीसरा नंबर हमारा, सृष्टि के बड़े। रटने की बात नहीं, बड़े बनने की बात है। रटना नहीं, मैं पूर्वज हूँ, पूर्वज बनना है। पीछे बाबा ने कहा, जैसे घर में बड़े छोटों का ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं, तुम सृष्टि के बड़े, सभी धर्मों की आत्माओं का ध्यान करो, केयर करो, उनकी संभाल करो, उनकी चक्कर लगाओ, देखो कहाँ किसको क्या कष्ट है। ये हो गई बहुत बड़ी चीजें, बड़ी स्मृतियां। इसके लिए पुरुषार्थ भी बहुत बड़ा होना चाहिए। और परसों कहा, संडे को प्रैक्टिस करेंगे सभी। मैं केवल रिपीट इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप सुने और रिपीट हो गया, ठीक हो गया। पूर्वज बनकर माया को ऑर्डर दो। माया बोलो किसको याद है, दो युग के लिए विदाई लो। मानेगी आपका, जिसके अपने माया ने विदाई ले ली होगी उनका माया ऑर्डर मानेगी। जो पूर्वज बन गए होंगे माया उनका ऑर्डर मानेगी। दूसरा, पूर्वज बनकर प्रकृति को ऑर्डर दो, प्रकृति सुखदायी हो जाओ। आप सब प्रकृति को ऑर्डर देंगे, सब जो भी यहां मधुबन में रहते हैं, क्या करो प्रकृति, बारिश करो, सबको सुख दो, सुखदायी बन जाओ। जरूर कुछ ना कुछ जो कर्मों का खेल है, वाइब्रेशन से संसार में चलते हैं, उसके कारण प्रकृति पर बुरा असर होता है। सभी एक विजन भी बनाएंगे, विजन माना मन में चित्र बनाएंगे। बहुत तेज बरसात हो रही है, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, नाले नदियां बह रही हैं जोर शोर से, आबू में, शांतिवन में बनाएंगे विजन। योगियों की विजन में बहुत भारी और गहरा इफेक्ट है, वो भी अभी इस मास के अंत में ही, इस मास 20 के बाद ही, 20 जून के बाद ही ये खेल शुरू हो जाए। और योग के लिए कौन कराएगा सुशील, सबको एक संकल्प देना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान प्रकृतिपति हूँ। याद है पॉइंट पीछे, प्रकृति की मालिक हूँ। पहले देह प्रकृति की मालिक, फिर संपूर्ण प्रकृति की मालिक, और आह्वान करेंगे प्रकृति अब ये पानी की कमी पूर्ण करो, तेज बारिश लाओ, आह्वान योग में। योग से पहले इस संकल्प से 15 मिनट एक साथ सभी योग करेंगे, अलग अलग करेंगे इफेक्ट कम होगा। एक साथ शाम को 6:30 बजे कौन कौन योग में आ जाते हैं? ठीक है, 7:15 से 7:30 तब तक बाकी भी आ जाएंगे, उठने वाले भी उठ जाएंगे, जो रह जाएं, चाहे शांति स्तंभ पर, चाहे यहाँ, चाहे नीचे हॉल में, कहीं भी, चाहे आप घूमते हुए योग कर रहे हैं, इस संकल्प से एक साथ 15 मिनट सब योग करेंगे। पसंद है? सबको करना है ये काम, तो हमारा पुरुषार्थ सहज हो जाए, संगम युग की यात्रा बिल्कुल सहज हो जाए। मैं कुछ गुणों पर और दो बाबा की पुरुषार्थ की बातों पर आपका ध्यान दिला रहा हूँ, जिससे योग का पुरुषार्थ सरल हो जाए। एक है योग को सरल बनाना, दूसरा है जीवन को सरल बनाना। यद्यपि योग सरल होने से जीवन सरल हो ही जाता है, परंतु कुछ गुण अगर मनुष्य साथ लेकर चलता है तो जीवन में और सहजता हो जाती है। बाबा की मुरलियों में बहुत आता है, मुझे तीन रूपों से याद करो। बोलो, बाप सुप्रीम फादर, टीचर और सदगुरु। इस याद करने की विधि केवल ये नहीं कि बाबा बैठे योग में और याद कर लिया, बाबा मेरा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, हो गया काम, ये नहीं। तीनों का नशा हो जाए, जो भगवान था वो अब हमारा, निकली नहीं आवाज, जो भगवान था वो अब हमारा है, हमारा है। पिता, पिता पर भी अधिकार होता है और पिता का भी अधिकार होता है, वो हमारी पालना कर रहा है। इसको अपने चिंतन में लाएंगे, नशा चढ़ाने के लिए अलौकिक नशा चिंतन की जरूरत होती है, इसको अपने चिंतन में लाएंगे, वो हमारी पालना कर रहा है, वो हमें प्यार दे रहा है, जो कुछ उसके पास है वो सब कुछ हमें दे रहा है, शांति का सागर है, संपूर्ण शांति दे रहा है, ज्ञान का सागर है, टीचर बनकर आ गया है, संपूर्ण ज्ञान दे रहा है। नशा हो जाए, हमारे पास संपूर्ण ईश्वरीय ज्ञान है, कोई बात जाननी शेष नहीं रही, ठीक है ना? लोग ढूंढ रहे हैं, पता ही नहीं चलता, ढूंढने की भी एक लिमिट है। 4 वेद हैं, 6 दर्शन हैं, उपनिषद, गीता, ब्रह्म सूत्र, पुराण, इनके अलावा कोई सोर्स नहीं है। उनमें ढूंढ रहे हैं लोग सत्य को, उसके बाहर सोच नहीं सकते। पढ़े हैं आप में से किसी ने इनमें से कोई? नहीं, आजकल तो कोई पढ़ता नहीं ना, ये पुरानी बातें हो गई ना। एक व्यक्ति बहस कर रहा था अभी कुछ दिन पहले मेरे से, मैंने पूछा, पता नहीं कहाँ था मैं, नडियाद या कहाँ, अभी अभी की बात है, मैंने कहा ये बताओ आपके नडियाद में कितने लोगों ने वेद देखे हैं? पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, देखे हैं केवल। किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। देखे किसी ने? आप में से देखे किसी ने? कहीं दुकान पे मिलते हैं? आपने देखे? कहीं दुकान पे मिल जाएंगे? मुश्किल। मैं एक बार शंकराचार्य की बायोग्राफी खरीदने के लिए दिल्ली की एक बड़ी दुकान पर गया, चावड़ी बाजार में, वो बहुत बड़ा पुस्तकालय है, जो कहीं नहीं मिलता हो वहाँ मिलता है। मैंने कहा भाई शंकराचार्य की जीवन कहानी चाहिए। बेचारा चक्कर लगा के आया कि भाई दिखती नहीं है। मैंने कहा नहीं होगी, अपने नौकर को भेजा, ढूंढो, वो 15 मिनट ढूंढ के आया, नहीं है। मुझे कहा तुम ही चले जाओ, उसके नौकर के साथ मैं चला गया। तो देखा, उसने बहुत ढूंढी, एक बहुत पुरानी, शायद बाबा आदम के जमाने की, सुनिएगा, बिल्कुल पुरानी, थोड़ी दीमक भी खा रही थी, उसको निकाली। मैंने कहा, भाई क्यों, क्या बात, शंकराचार्य इतने महान पुरुष हुए हैं, उनकी जीवन कहानी नहीं रखते कि जब से मैं इस दुकान पर बैठा हूँ आप ही आए हो लेने। अब बोलो, उन महान पुरुषों से कोई कैसे क्या सीखे, आजकल की पीढ़ी वो तो कुछ भी नहीं जानती। हमें संपूर्ण सत्य ज्ञान मिल गया। शंकराचार्य की दो बायोग्राफी लिखी गई है, और भी होंगी पर मैंने दो देखी। एक को पढ़ के तो लगता है गपशप बहुत हैं। जैसे सरस्वती जो मंडन मिश्र की पत्नी थी, वो शास्त्रार्थ में जज थी, वो जजमेंट देके उड़ के स्वर्ग में चली गई। ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो लेकिन दूसरे ने जो लिखी है वो बहुत सुंदर लिखी, उसका विश्लेषण बहुत अच्छा किया है। बाबा ने हमें संपूर्ण सत्य ज्ञान दे दिया, खोज समाप्त कर दी। एक एक बहुमूल्य रत्न हमारे पास है, लोग आत्मा को ढूंढते रह गए और बाबा ने एक लाइन में रोज बता दिया, तुम आत्मा हो बच्चे, देह भूल जाओ, तुम यहाँ बैठे हो, कानों से सुन रहे हो मेरा ज्ञान। कितना सरल कर दिया, तुम परम धाम से आए हो। ऐसी ऐसी गहरी बातें बता दी जो शास्त्रों में वेदों में कहीं जिनकी चर्चा नहीं है, परम धाम का स्पष्ट चित्रण। और उस स्पष्ट चित्रण में बहुत गहरी बात है, हर धर्म की आत्मा अपने अपने सेक्शन में रहती है। क्यों, प्रकृति सतोर जो उत्तम तीन स्थितियों से गुजरती है, ये सब जगह लिखा है। मैंने एक से पूछा, क्यों जब सतो थी रजो में तमो में क्यों आ गई, और तमो से सतो कैसे बनेगी, इसका कुछ पता नहीं, बनती है। बाबा ने सब स्पष्ट ज्ञान दे दिया, कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान, जिसको लोग पाप समझ ही नहीं रहे। आजकल तो सारे कर्म ऐसे हो रहे हैं जो पाप की लिस्ट में डाल दिए जाएं। बाबा ने उनकी अवेयरनेस दी, जानकारी दी, ये सब पाप है। तो गुह्य ज्ञान, भगवान पढ़ाने वाला, और हम पढ़ने वाले गॉडली स्टूडेंट्स हैं, ये नशा हो जाए। ये है टीचर की याद, पढ़ाने वाला कौन आया, हमें पढ़ाने के लिए किसको आना पड़ा और क्या पढ़ाया, मनुष्य देवता बना दिया पढ़ाकर, विश्व की राजाई दे दी पढ़ाकर, इस सब का नशा हो जाए। ठीक है, सद्गुरु, किस किस माता ने गुरु किए थे, हाथ उठाओ। अरे वाह, भाइयों में कम है, जो भाइयों गुरु पसंद नहीं थे, भाई खुद ही गुरु भाई खुद ही गुरु है, माताएं गुरु, अब तो बाबा ने बना दिया। देखो गुरु का कितना नशा रहता था, मेरा गुरु फलाना है। परम सदगुरु जो सुप्रीम है, वो गुरु बनकर आ गया, और आते ही मुक्ति और जीवन मुक्ति अधिकार में दे दिया। अब मर के कहां जाएंगे चिंता नहीं, सीधे मुक्ति धाम, स्वर्ग पर जन्म से अधिकार। बस हमें ये करना है कि परम सदगुरु की हर बात माननी है, केवल कहना नहीं तुम हमारे सदगुरु हो, लेकिन जो आज्ञा, बाबा याद दिलाते हैं, भक्ति में तुम कहा करते थे, हे प्रभु जब आप आओगे हमारी तो जाएंगे, एक और बात, हम तुम्हारी ही मानेंगे, हम तुम्हारी आज्ञाओं पर चलेंगे। अब उसकी आज्ञाएं कुछ ऐसी भी हैं जो थोड़ी भारी हैं, माताओं को उस पे चलना कहीं कहीं कठिन होता है, फिर भी माताओं को क्या बना दिया बाबा ने, शिव शक्ति बहादुर, जो धारणाएं कठिन थी उनको सरल कर लिया, संघर्ष भी हुए लेकिन विजय हो गई। तो ये तीन स्वरूप जिनसे हमें बाबा को याद रखना है, ये सहज होगा, इसके लिए बैठने की भी जरूरत नहीं, ये हमारे जीवन में समा जाए, हमारी कॉन्शियसनेस में, हमारी स्मृतियों में समा जाए। भगवान भगवान नहीं हमारा, हम उसे वैसे ही बात कर सकते हैं, हम उसे वैसे ही मिलते हैं जैसे अपना बाप, घर में बाप आता है तो बच्चे कैसे भाग के लिपट जाते हैं, ऐसा गहरा नाता हमारा उससे हो गया। दूसरी बात जिस पे ध्यान देना है, रोज ध्यान देंगे तो वो अभ्यास करते करते बड़ी नेचुरल होती जाएगी, वो है आप रोज मुरली ध्यान से सुने, बाबा याद दिला रहा है बच्चे तुम देवता थे, सर्वगुण संपन्न थे, तुम ऐसे थे, लक्ष्मीनारायण का चित्र दिखा देते थे, तुम इतने महान थे, तुम पूज्य थे, पहुंचा करे वहां, कैसे तुम नीचे उतरते आए हो, तुमने क्या क्या किया, तो रोज बाबा पूरे चक्र की हमें याद दिलाता है। देखो ध्यान से मुरलियों में रोज, साकार मुरली में रोज याद दिलाता है, मैं आ गया हूं फिर से तुम्हें तुम्हारा राज दिलाने के लिए, योग बल से तुम विश्व का राज प्राप्त करते हो, वहां वहां पहुंचा करें तो जीवन तेजी से बदलता जाएगा, सुखद फीलिंग होंगी, क्योंकि जरूरत एक ही चीज की आजकल बहुत है कि मन की गति धीमी रहे, मन की गति फास्ट न हो जाए। मन की गति फास्ट होती है, एक उदाहरण दे रहा हूं सच्चा, आज एक बहन का फोन है, छोटी ज्ञान में थी कुमारी, फिर शादी हो गई, छोटी बच्ची है, रो ही रही थी, मैं बहुत दुखी हूँ, क्या हुआ, मैं सबके लिए अच्छा करती हूँ, सब मेरे लिए बुरा करते हैं। बात बड़ी प्रैक्टिकल होती है, कईयों के साथ ये होता है, सभी के साथ होता है, पर सोचने की बात है ना, केवल हम अच्छा कर रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, हम करते चले, दूसरे क्या कर रहे हैं ये उनके ऊपर है ना, उन पे तो हमारा अधिकार नहीं है। मनुष्य काम ना रख लेता है पहले ही, मैंने इसकी भलाई की ये भी मेरी भलाई करे, ये जो कामना है ये मन को कमजोर कर देती है। ध्यान दें इस पे सभी भाई बहने, ये कामना, मैंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, शादियां कराई, काम धंधे सेट करके दिए, अब मैं बूढ़ा हो गया तो देखो बच्चे क्या क्या करते हैं, कामना रख ली थी। निष्काम भाव धारण कर लें सभी, पालना करना माँ बाप का कर्तव्य है। ऐसे बहुत सारे माँ बाप मैंने देखे ज्ञान वाले, ज्ञान में हैं, बच्चों के लिए सब कुछ किया, अब निश्चिंत हैं, भाई अब तुम अपना काम संभालो, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चों को कहते हैं अब हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सुखी रहो, अगर वही कामना करें, मेरे पास नहीं आया, देखा मुझे छींक आ गई, पूछने भी नहीं आया पापा छींका क्यों, ऐसे भी नाजुक हैं कहीं मुझे जरा सा बुखार हो गया, पूछने ही नहीं आए क्या हाल है पापा, अब बेचारा बिजी हो बच्चे, कहीं कोई और काम में हो, नहीं आए, काम ना जहां रखते, अगर इसी जगह बोलो चेंज करेंगे अपने को, इसी जगह नो और कुछ, आपको तेज बुखार हो ही गया है, बच्चे कहीं बिजी हैं, आपने फोन भी किया और नहीं आ पा रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, बच्चे आते नहीं है, कोई नहीं पूछता मुझे, इन सब बातों को छोड़कर अगर एक आदत बना ली जाए, सीधा ऊपर वाले को याद करें, नीचे वालों को नहीं, देखो फिर क्या क्या चमत्कार होता है। लेकिन ये आदत चाहिए, आदत क्या पड़ गई मनुष्य को, अपनों को याद करना। फोन है ना आजकल, फटाफट फोन, और मान लो उसने फोन नहीं उठाया तो और दुखी, 10 मिनट नहीं उठाया तो सारी खुशी नशा स्थिति गई, भले वो बेचारा कहीं इम्पोर्टेंट काम में बिजी हो। अब एक आदत सब डालेंगे, पहली स्मृति, मैंने अपने को भी चेक किया, वो दिन धरती हिली, मैं बैठा था, बैठा इसलिए था, नॉर्मली 10:30 बजे में बैठता नहीं हूँ, मेरी सेवा करने भाई आता है, उसको जरा क्रिकेट का शौक है, कहा गेम चल रहा मैं देख लूँ, मैंने कहा चलो देख लो भाई थोड़ा सा, मैंने कहा 10:30 बंद करके चल जाना, पता लग जाएगा कौन हार रहा है, मैंने उसे बता दिया अब ये हारेगा, देखने की क्या जरूरत है। तो 10:30 बजे घूंगू घूंगू पैर नीचे थे, हिलने लगे और मेरी बुद्धि एकदम बाबा में, और दूसरा संकल्प आया मैं प्रकृति का मालिक हूँ। इसके बाद तुम्हारी जिन नहीं थी, वो तो निकल गया, लेकिन मैंने सोचा कि बड़ा अच्छा है, मुझे यही याद आया, क्योंकि बाबा ने ये सिखाया हुआ है, धरती हिलने लगे भागो नहीं, योगयुक्त हो जाओ। तुम योगयुक्त हो जाओगे तो प्रकृति तुम्हारी सुरक्षा करेगी, और अगर मान लो शरीर छूट भी गया तो सर्वश्रेष्ठ गति होगी, बिना कष्ट के दे छूटेगा। तो मुझे ये पक्का है, साकार से ही बाबा सिखाते आते थे यज्ञ के शुरू से ही। तो हमें ये प्रैक्टिस डालनी है भिन्न भिन्न स्थिति परिस्थितियों में, कि याद वही आए जो सच्चा सहारा है। मनुषा भी गया तो क्या करेगा, आपके 4 बच्चे हैं, चारों आ गए, आपको 8 की तकलीफ हुई है, वो आपको हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं, चारों ले जा रहे हैं, लेकिन ले जाते ले जाते आपकी मृत्यु हो गई, क्या करेंगे चार, चारों बच्चे आपको हॉस्पिटल ले गए लेकिन डॉक्टर नहीं है, क्या करेंगे बच्चे, भाग दौड़ कर रहे, नहीं आ रहा है डॉक्टर, ये होता है, ये सच्ची घटनाएं हैं, वो मैं सुना रहा हूँ, माताएं सुनाती हैं कि हमारा ऐसा दुर्भाग्य, एक की तो सचमुच दुर्भाग्य की कहानी, 22 साल का लड़का, 1 हफ्ते पहले शादी हुई थी, कोई दर्द वर्द हुआ, पहले तो माता ने सोचा भाई गैस वैसे कुछ पिला देते हैं घर से, नहीं दर्द हुआ, हॉस्पिटल ले गए, सीढ़ी चढ़ के उसके हॉस्पिटल में गया, हार्ट स्पेशलिस्ट था, वो वहां था ही नहीं, इतने फोन वोन किया कि मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, इतने बच्चे ने सर ही छोड़ दिया, ऐसे हो गया, सारा खेल बिगड़ गया। अब बेचारी न रो सकती थी न कुछ किसी को कह सकती थी, तो मेरे पास आई थी रोने को, हो मैं कहा रो लो तुम, क्योंकि रोना जरूरी था, किसके सामने रोई नहीं, मैं कहा रो लो अभी, यहाँ कोई तुम्हें देखने वाला नहीं है, क्योंकि ये परिस्थिति ऐसी, एक ही लड़का 8 दिन पहले शादी हुई, देखो कैसा कर्मों का खेल है। तो याद करेंगे पहले उसको जो सच्चा सहारा है, उसके याद से डॉक्टर नहीं भी होगा ना, आ जाएगा कहीं से आप ही, कि मुझे बस संकल्प आया कि चलता हूं अपने हॉस्पिटल। योगयुक्त होने से सारी स्थिति परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी, समझते हैं ना इस बात को, इसलिए कुछ भी छोटी मोटी बात हो और दूसरों के लिए निष्काम भाव, बड़ी गहराई है इसमें, डॉक्टर से भी कामना नहीं कि ये ठीक कर देंगे हमें, ये हमें ठीक नहीं देख रहे हैं, हमारी केयर नहीं कर रहे, कैसा हॉस्पिटल है, पैसे वालों को पूछते हैं, गरीबों को कोई नहीं पूछ रहा, इस सब से क्या होगा, मन की स्थिति एकदम बिगड़ जाएगी। याद करो बाबा को, आ गए बाबा तुम्हारे पास, तुम सुप्रीम सर्जन हो, अब केयर कर लेना हमारी, देखना क्या करता है वो। तो ऐसा हम अभ्यास बढ़ाएं जीवन में कि हमें एक की याद आए तो विनाश काल में ये बात बहुत काम आएगी, क्योंकि बाबा ने तीसरी बात ये भी कही, जिन्होंने बाबा के कार्यों में सहयोग दिया होगा प्रकृति उन्हें सहयोग देगी। ये सब खेल समझ में आएगा जब प्रकृतिक प्रकोप होने लगेंगे, कि सबके घर गिर गए, इनके बचे हुए हैं। नदी में बाढ़ आई, सब बह के चला गया, ये सुरक्षित है क्योंकि उन्होंने बाबा के कार्यों में मदद की थी। और जिन्होंने अपने को ही दे दिया बाबा के कार्यों में, बोलो देने वालों क्या होगा उनका? भाई तो बैठे, बहने तो मुझे नहीं दिख रही। जिन्होंने अपने को ही दे दिया उनका क्या होगा? जो सहयोग देते हैं उनको प्रकृति सहयोग देगी, जिन्होंने सर्वस्व दे दिया। चलो वो अपने मुख से नहीं बोलेंगे, आप बोल लो, सेवा में आए हैं ना सभी, आपको बहुत मदद मिलेगी बाबा की, बाबा की भी और प्रकृति की भी, परिस्थितियों की भी मदद मिलेगी, अन्न भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा। अब पानी की समस्या यहाँ है लेकिन मिल तो रहा है ना, कोई प्यासे नहीं है, मिल रहा है। परीक्षा किसी भी कारण आती हो लेकिन बाबा की बहुत मदद होती है। जब ये केवल पांडव वन था, अव्यक्त बाबा से पूछा करते थे, यहीं बाबा पानी नहीं मिल रहा है, बता दो कहीं। बाबा कहता था आसपास पानी बहुत है, ढूंढो। मिल गया, ये यहाँ चार भुजा क्या ना, वहाँ कुआ था वो खरीद लिया गया, फिर यहाँ गार्डन है वो ले लिया, उसमें कुआ था, सब होता रहा। हम बाबा के लिए क्या कर रहे हैं सोच लें। जब भगवान युग बदलने आया तब हमारा हाल क्या है और हम क्या कर रहे हैं? ऐसे नहीं जब भगवान युग बदल रहा है हमारा हाल बेहाल हो। कैसा हो हमारा हाल? खुशहाल, सबसे सुंदर हाल, क्योंकि हम सभी हैं पूर्वज, सृष्टि के आधार, हमें देना है संसार को। दो गुण बता दें जिनके आधार से जीवन की यात्रा सुंदर हो जाए। दो बहुत कम हैं, गुण तो 20 होने चाहिए पर मैं 0 हटा दी, दो बताओ। हाँ, संतुष्टता और सरलता, वैसे तो निरहंकारिता भी 3 जोड़ लो। ये 3 गुण मनुष्य के जीवन की यात्रा को सुखद, सरल, सफल बना देते हैं। संतुष्टता, जीवन ही संतुष्टता पूर्वक जीने का संस्कार हो। इस संसार में कुछ लोगों का ऐसा संस्कार है कि चाहे कितना भी मिल जाए खुश होते ही नहीं। जैसे आपके घरों में कई बच्चे होंगे, कुछ भी दे दो खुशी नहीं होते। माताओं की ये समस्या आती है, छोटी माताओं की, नहीं तुम्हारा बच्चा तो खुश है। कई माताओं की ऐसी, छोटे बच्चों की, कि इन्हें कुछ भी दे दे हम, ये चिड़चिड़े ही रहते हैं, परेशान रहते हैं, हाथ पैर मारते रहते हैं इधर उधर। बड़ों को विशेष संतुष्ट रहने का संस्कार डालना है। हर जगह संतुष्ट, सेवाओं में भी, साथियों से भी, सोने में भी। सोते भी तो इकट्ठे हैं ना बहुत सारे लोग, अब इकट्ठे सोते हैं, कोई कैसा कोई कैसा, वहां भी संतुष्ट रहना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। और जो सहनशील हैं, संतुष्ट हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होती। लेते रहो 10 लोग खराटे, वो आराम से सोएंगे, ट्यून बज रही है, मुझे बड़ी फर्स्ट क्लास नींद आई, हमें तो ट्यून बज रही थी, सुखद ट्यून। और जिसको ज्यादा सोचने की आदत है, एक व्यक्ति खराटा ले रहा हो न पड़ोस के कमरे में भी, तो भी परेशान होंगे, सोने नहीं दे रहे हैं हमें। अपने चित्त को शांत करना है, बहुत बुद्धिमानी की बात है, समझदारी की बात है। जैसे बाबा का एक सुंदर महावाक्य है, सच्चा ज्ञानी वो जो आत्मभिमानी हो। यहाँ सच्चा ज्ञानी वो जो अपने चित्त को संगम युग पर शांत कर ले, शांत कर ले सभी अपने को, यह संपूर्ण संतुष्टि। समझ रहे हैं ना भाई लोग, शांत कर लें। जो कुछ हो रहा है उल्टा सुलटा होता ही है, वो तो नहीं होगा जो हम चाहते हैं, उल्टा सुलटा बहुत होगा। अपनों से धोखा मिलता है कलयुग में, अपनों से कष्ट होता है क्योंकि कर्मों के हिसाब किताब है। उन सब को आराम से पार करते हुए चित्त को शांत कर लें। मुरली में परसों भी था, जो चाहते हैं वो नहीं होता, जो नहीं चाहते वो होता रहता है। ये साइन है किस चीज का? कर्मों के, कड़े कर्मों के खाते का। तो वो है, किया हमने है तो हमारे सामने अवश्य आएगा। जब करते हुए आनंद ले रहे थे तो भोगते हुए भी सहज भाव से आनंद पूर्वक भोग ले। अपना कर्ज लिया हुआ उतर रहा है, उतर रहा है। परेशान होंगे तो उतरेगा नहीं, मल्टीप्लाई होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। सहज भाव से पार कर लेंगे उतर जाएगा। इसलिए चित्त को शांत करेंगे। देख लो कहां कहां से मन परेशान हुआ है, किस किस ने इसको क्रोध दिलाया है, कौन कौन सी चीज अग्नि बनकर चित्त की शांति को जलाती रही है, सबको बुझा दो। भगवान मिल गया, बस पूरा हो गया खेल। कुछ भी हुआ हो, चाहे 5,000 साल में ही, 2,500 साल तो कुछ हुआ नहीं, 4,000 साल भी कुछ नहीं हुआ, कईयों को 4,500 साल भी कुछ नहीं हुआ, लास्ट में हुआ है। कुछ भी हुआ हो, कांटों से गुजर के आए हो, सूलों पर चल कर आए हो, कहाँ पहुंच गए? कहाँ पहुंच गए? भगवान के साथ हो गए। पास नहीं पहुंचे अभी, नहीं तो लोग डरते हैं, भगवान के पास पहुंच गए माना खराब बात, भगवान के साथ ही बन गए। सारी थकान ही उतर गई ना जन्म जन्म की, भगवान की दृष्टि मिली, उसका प्यार मिला। जैसे उसने कहा मीठे बच्चे, कहा नहीं, प्यार के वाइब्रेशन फैला दिए, सुख मिल गया, चैन पा लिया चित्त ने, संतुष्ट कर ले अपने को। हाँ जी, सब संतुष्ट हो जाए। कुछ भी हुआ, बच्चों ने कुछ किया, पति ने कुछ किया, पूरा हुआ शांत। अब हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। मुझे गीता में एक बात बहुत अच्छी लगती रही सदाई, श्री कृष्ण दिखाए वहां, तो श्री कृष्ण बोल रहे हैं, मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा। बाबा भी यही बोलता है ना, सब कुछ बच्चों के लिए, मैं तो निष्काम, तुम्हें सब कुछ देकर जाकर अपने घर विश्राम करता हूँ, मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहा। ये स्थिति बनानी है हमें, अपने लिए कुछ नहीं चाहा, कुछ चाहिए ही नहीं किसी से, हम पूर्ण संतुष्ट हुए। सरल चित्त, सहज भाव से जीवन जीते रहे। अब बहुत सारे बिजनेसमैन उलझते जा रहे हैं, कितने ही करोड़ों में धंधे पहुंचा लिए, उधार की लेन देन हो गई, बैंकों से ब्याज ले लिए, अब फंस गए हैं। अब कहते हैं बस सुसाइड ही कर लें परिवार सहित, ऐसी स्थिति में बहुत लोग पहुंच गए। ये स्थिति नहीं लाने देनी अपने को, सहज भाव से जीवन जिए, बहुत लोभ से नहीं। असली लोभ रखना है कि इस समय तो मुझे आए हुए शिव बाबा से सब कुछ लेना है, यहाँ से बहुत कुछ लेन देन हुआ, अब सब कुछ ऊपर वाले से लेना है। लेने की विधि उसने बता दी है, इसलिए अपने को काम धंधों में इतना उलझा नहीं देना है कि मरने की नौबत आ जाए। आराम से खाएं पिएं, परिवार चलाएं, इसमें संतुष्ट रहना है। समय अब तेजी से बदलेगा, अब देने वाले नहीं मिलेंगे आपको, जिनको आपने दे दिया समय लेना, हिसाब पूरा कर दिया। मैं इशारे में कह रहा हूँ, समझ गए ना भाई लोग, अब देने वाले बहुत कम होंगे, क्योंकि उनके पास होगा ही नहीं, वो कहेंगे भाई हमें ही ले लो, हमें भी तुम ही खिलाना, तुम्हारे ही घर आ जाते हैं, हमारे पास कुछ नहीं बचा। सहज भाव से जीवन जीना, सहज भाव से कर्म करना, सहज भाव से व्यवहार में रहना, विदाउट एक्सपेक्टेशंस, कामनाएं नहीं। सुखी जीवन उसी का है जो निष्काम हो गए, जिन्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए, निरहंकारी। अब जो भगवान है वो ही अहंकार नहीं रखता। हमारे पास तो है क्या जिसका अभिमान रखें? बात करें अपने से, बाबा ये दो बातें सिखाते हैं, मैंने तो बहुत सीखी थी। जो सुप्रीम है, मालिक, कोई अहंकार नहीं है। और जो सेकंड नंबर है ब्रह्मा, उसको भी कोई अहंकार नहीं। सबसे बड़ी हस्तियां, सबसे अधिक बुद्धिमान, सबसे बड़े त्यागी, सबसे बड़े तपस्वी ब्रह्मा बाबा, कोई अभिमान नहीं। न बच्चों का अभिमान, न अपनी धन संपदा का अभिमान, न बुद्धि का अभिमान, न सुंदरता का अभिमान, न पद का अभिमान, अथॉरिटी का अभिमान, सब में निरहंकारी। और इसके लिए बाबा ने कौन सी विधि बताई? नहीं, एक बहुत सुंदर विधि, एक ही संकल्प की विधि है। जो कुछ तुम्हारे पास है वो प्रभु प्रसाद है। मुझे ये बात बहुत प्रिय लगी, बहुत साल पहले सुनी थी। जो भी तुम्हारे पास है प्रभु देन है, ईश्वरीय देन। बिल्कुल अच्छी, मैं तो अच्छी तरह जानता हूँ। मैं आज क्लास कराने आया यहाँ, मुझे यहाँ तक गेट तक आते हुए ये नहीं पता था क्या क्लास कराना। मेरे साथ भाई आया, उसने पूछा क्या क्लास कराओगे, कहा मैं तो अब तक सोचा ही नहीं। उसने कहा कि ये करा देना बाप टीचर सदगुरु की, क्योंकि मैं ज्ञान सरोवर में कराई थी, तो ये उसको अच्छी लेखा ये ही करा देना। तो अब मैं सोचू मैंने कराई है, बनेगी बात? नहीं, ये सब ईश्वरीय देन है। अगर हम इस फीलिंग में रहते हैं ना, परिवार भी, चाहे आपको परिवार है, अच्छा धन है, बच्चे अच्छे अच्छे पदों पर हैं, आप बहुत सुखी हैं, सब प्रभु प्रसाद है, तो सुख मिलेगा ना ये सोचते कि बाबा ने हमें कितना अच्छा सब कुछ दिया है। बाबा भी याद रहेगा और अभिमान भी नहीं आएगा, क्योंकि अभिमान क्या है? पॉइजन। सुखी जीवन में ये जहर घोलने वाली बात है। सुखी संबंधों में, प्यार भरे संबंधों में ये कड़वाहट घोलने वाला विष है। है या नहीं अभिमान? घरों में झगड़े किस चीज के कारण है? अभिमान के कारण। आज घर टूट रहे हैं, ये शब्द भारत में नहीं था। मैं जब विदेश में गया तो वहां बोलते थे फैमिली ब्रेक हो रही है। मैं सोचता था पता नहीं क्या होता है इनको, अब भारत में हो गया। परिवार टूट रहे हैं, केस बढ़ रहे हैं कोर्ट में। हम सभी निरहंकारी बन जाएं, दोनों बाप की छवि हम में आ जाए, जैसे वो संपूर्ण निरहंकारी हैं, हम भी संपूर्ण निरहंकारी हों, ऐसा संगम युग का सुंदर जीवन। गुण तो और भी बहुत सारे हैं, सॉफ्ट हमारी नेचर हो, नम्रता हमारा कवच हो, नम्रता कवच है बाबा ने कहा, सत्यता हमारी शक्ति हो, प्योरिटी हमारा श्रृंगार हो, शांति गले का हार हो, तो ये जीवन सजा सजाया बहुत सुखद, जिसको देखकर आने वाली सारी संतति युवा वर्ग सुखी हो जाए, ठीक है। बड़े बड़े काम करने हैं सबको, तो बारिश का आह्वान करेंगे, भूलना नहीं, अब भी करेंगे। चले सभी फीलिंग में बैठेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान प्रकृति पति, और बारिश का आह्वान करें पूर्वज बनकर, हे प्रकृति अब बारिश करके सबको सुख प्रदान करो।